हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 21, 22 एंड 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुधीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि जो कृष्ण है वे साक्षात भगवान है। एशवाय भगवान साक्षात आदिओ नारायण पुमान वो आदि नारायण है। लेकिन मोहयन माया लोकम पूरी जो माया है उनकी उससे सारे लोगों को वह भ्रमित कर देते हैं। गुरुशरति विश्वेशा और आपके विष्णु कुल में आकर वो हमारी तरह व्यवहार करते हैं, परंतु वे साधारण नहीं है। इसलिए अस्यानुभावं भगवन् वेद गुह्यतमं शिव, इनको कोई नहीं जान सकता, इनकी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता, लेकिन इनकी महिमा को जानने वाले हैं शिव जी, देवर्षि नारद साक्षात, साक्षात देवर्षि नारद और भगवान कपिलो नृप, भगवान कपिल मुनि उनको जानते हैं। और साधारण व्यक्ति जो है वो इनके विषय में नहीं जान सकते, जो बहुत बहुत महानतम व्यक्ति हैं वही उनकी महिमा को जान सकते हैं। यम मन्यसे मातुले प्रियम मित्रम सुहृतमम, आप जिसे अपने मामा का बेटा समझते हो, अपना प्रिय मित्र समझते हो, जिसे अपना सुहृद मानते हो, वो अकरो सचिवम दूतम, कभी तो उसे अपना दूत बनाते हो, सुहृदाद अथा सारथी, और कभी अपना सारथी बना देते हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है, वो कोई भी कार्य करता है, चाहे वो आपका दूत बन जाए या सारथी बन जाए, लेकिन वो उसके पद से कभी भी नीचे नहीं गिरता, वो हमेशा अपने पद पर रहता है। और इसके आगे भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वात्मनः समदृशो यद्यस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्य निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृश्यो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम् निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः समदृश्यो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं मति वैषम्यम् निरवद्यस्य न क्वचित्। सर्वात्मनः अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, ये जो भगवान श्री कृष्ण है, वो हर एक जीव के सर्वात्मना सबके जीव, सब जीवों के हृदय में वो वास करते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो। अगर कोई देवता है तो उसके हृदय में भगवान वास करते हैं, कोई अगर ना सुअर है तो उसके हृदय में भी, खटर का खीरा है तो उसके हृदय में भी भगवान वास करते हैं। लेकिन समदृशो यानी सबों पर समान रूप से दयाल होने का ही निश्चय ही अद्वयस यानी परम का और अनहंकृते मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त, भगवान ये नहीं सोचते कि मैं कितना भगवान इतना महान है, तो साधारण से जीवों के अंदर जाके क्या बैठूं मैं, ये कीड़ों के अंदर या कुत्तों के अंदर मैंने, भगवान इतने महान हैं कि वो कहीं पर भी रहते हैं तो वो भगवान ही कहलाते हैं। और तत्कृतम उनके द्वारा सब कुछ किया जाता है, जो कुछ भी हो रहा है, मति चेतना वैषम्यम विषमता अंतर यानी कि उसके अंदर कोई अंतर, निरवद्यस्य समत समस्त आसक्ति से मुक्त हुआ न कभी नहीं क्वचित किसी अवस्था में। इसका अनुवाद है कि भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान है, सर्वात्मनः समदृश्य और भगवान सबके हृदय में है, वे सबों पर समान रूप से कृपालु हैं। और यद्वयस्यानहंकृते वो सबके समान रूप से दयालु हैं और विषमता की मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं, वो सबके साथ समदृष्टि हैं, चाहे पापी हो या पुण्य आत्मा हो, वो सबके साथ समान रूप से हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में 9.29 में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, मैं सबके साथ समान हूँ, ना मैं किसी का दोस्त हूँ, ना ही किसी का पक्षपात करने वाला हूँ और ना ही किसी का शत्रु हूँ, मैं सबके साथ सम हूँ। और इसी बात को यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं, यद्वयस्यानहंकृते इनको कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता, सबके साथ सम दयालु है। और उसके साथ साथ वे कहते हैं, अतएव वे जो कुछ भी करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है, जो कुछ भी तत्कृतम मति वैषम्य नरवद्यस्य न क्वचित। भौतिक जो है वो
उस स्तर पर नहीं होता है। भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक कार्य होते हैं। उन कार्यों का कोई ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये कार्य किया है या करवाया है तो उसके कारण किसी को दुख भोगना पड़ेगा। नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार जो हो रहा है, भगवान के आदेश के अनुसार जो होता है वो कभी भी अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे ना कि मैंने बहुत अपराध किए हैं, तो वो कहते हैं कि भगवान होने के कारण वे जनजन के हृदय में विद्यमान है, यानी कि सबके हृदय में बैठ कर उन्होंने ये सारी प्लानिंग की थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि अपराधी अपराध करता रहेगा और उसका वध नहीं होगा, अधर्म का नाश नहीं होगा, तो फिर वो अपराधी जो है वो और भी ज्यादा अधोगति को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान देखते हैं कि अब अपराधी जो है उसके पाप का घड़ा बढ़ गया है, तो क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से उसका घड़ा फोड़ देते हैं, यानी कि उसको अधर्म को मिटा देते हैं। क्योंकि इससे अधिक अगर वो अधर्म करेगा तो फिर उसके लिए नरक में भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए भगवान यहाँ पर भीष्म पितामह बता रहे हैं कि वो सबके ऊपर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ उन्होंने कौरवों के साथ अच्छा नहीं किया या जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ अच्छा नहीं, उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी अब अपराध का साथ दे रहा था, तो जाहिर सी बात है मुझे भी इस अवस्था में आना था। ये सब भगवान की कृपा है, वो सब पे समान रूप से दयालु होते हैं। अतः वह जो कुछ भी करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है, वे समदृशी हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि वे परम पूर्ण हैं अतः उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है, वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति उनकी भक्ति की अभिव्यक्ति है, सॉरी उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कुछ भी है भगवान के अतिरिक्त और संसार में कुछ नहीं है। अगर कुछ दिख रहा है तो वो भी भगवान का ही अंश है, भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अपनी शक्ति से वे सर्वत्र उपस्थित हैं और उससे अभिन्न है। हर जगह भगवान ही है, जो कुछ भी दिख रहा है वो उनकी शक्ति से हो रहा है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा चतुर्दक बंटे हुए होते हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं, अतएव वे पहले से ही सारथी तथा समस्त जीवों के उपदेशक यानी मंत्री हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च पद में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह तो भक्ति की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूंकि जीवन की भौतिक धारणा से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। अब इस संसार में यदि कोई भौतिक स्टेज पर कोई लो लेवल का कार्य करेगा तो हम बोलेंगे ना कितना बड़ा आदमी है और ऐसा कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का पद क्योंकि आध्यात्मिक है और भगवान है ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, तो जिस तरह से उनकी इच्छा होती है वो भगवान के ऊपर कृपा करते हैं, जैसे भक्त चाहता है वैसे भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो लेकिन भगवान यदि सारथी भी बन जाते हैं या दूत भी बन जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि वो भक्तों के ऊपर अपना स्नेह प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं चूंकि जीवन की भौतिक धारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, ऐसा ही सब भौतिक तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं, अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्तम है ना ही अधम है। वो चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण समस्त जितने भी ब्राह्मण वहां पर आ रहे थे उनके पग धो रहे थे, उनके चरण जो है वो धोते थे, स्वयं भगवान शंख में जल भरते और उससे उन सब ऋषियों के चरण धोते थे और अपने पीताम्बर से उसके चरणों को साफ करते थे, एक एक ऋषि के चरण पखारते थे और उसमें इतना संतोष भगवान को हो रहा था। मतलब इसका मतलब ये थोड़े है कि वो भगवान है, और भगवान अगर भगवान तो भक्तों से इतना स्नेह करते हैं कि उनके चरण धोने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। वो जब ऋषियों जब ऋषि लोग जब खाना खा लेते थे, जब प्रसाद सारा स्वीकार कर लेते थे, तो उनके जो जूठे बर्तन होते थे ना, तामे रखे होते, वो भी भगवान है ना उठाते थे। भगवान ने अपने ऊपर ये सेवा रखी थी। आज हम देखें कोई भी है ना अपने लिए छोटी सेवा स्वीकार नहीं करता ना, है ना, कोई भी नहीं सोचेगा कि भाई मैं शूज वाली सेवा करूं या बस शूज सबके संभालूं, या मतलब छोटी सेवा स्वीकार करने में हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हम बोलते नहीं बड़ी सेवा होनी चाहिए कि मैं ना या तो डीटी विग्रह सेवा करने में आरती करूं, या फिर मैं पीच करूं, या मैं कीर्तन करूं। बड़ी बड़ी सेवा सबको पसंद लगती है, छोटी सेवा के लिए सब एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन भगवान देखो त्रिलोकी के नाथ है और वो इतनी छोटी छोटी सेवाएं यज्ञ राजसूय यज्ञ में स्वीकार करते हैं। भगवान सब ऋषियों के चरण धोते हैं और इतना संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के कार्य जो होते हैं वो भौतिक धरातल पर नहीं, ऐसा नहीं है कि यदि वो ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं तो ब्राह्मण महान हो गए और भगवान का पद नीचे हो गया। वे अपने को किसी वस्तु से, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता है कि मैं करूं, मैं कैसे हो सकता, मैं भगवान हूँ, मैं कोई बर्तन उठाऊंगा, मैं भगवान हूँ, मैं कोई चरण, मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतः वह अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते हैं, उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त का सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते हैं। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। ये भक्ति ऐसी है कि वो भगवान को विवश कर देती है कि जैसा मेरे भक्त को अच्छा लगेगा ना मैं वैसा। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीना, कि जैसा मेरा भक्त चाहता मैं उसके आधीन हूँ, मैं उसके वश में रहता हूँ, जैसा उसे अच्छा लगता है मैं वैसा ही करने पर विवश हो जाता हूँ। और ये भगवान भक्त की भक्ति है जो भगवान को विवश कर देती है वह कार्य करने में। वास्तव में जितना हमारा सरेंडर लेवल होता है उतना ही भगवान की कृपा होती है। जब हमारा सरेंडर लेवल शरणागति 20% होती है तो भगवान की कृपा भी 20% ही होती है, और जब सरेंडर लेवल 100% होता है तो भगवान की कृपा भी 100% होती है। हम ये सोच सकते हैं कि भाई पांडवों के ऊपर भगवान ने इतनी कृपा की, हमारे ऊपर इतनी कृपा नहीं करते, लेकिन पांडव क्या का जो शरणागति है ना वो भी तो इतनी थी। पांडव समस्त सहारों को छोड़कर केवल कृष्ण के विषय में सोचते थे, केवल कृष्ण को समर्पित थे। यदि हम भी अपने समस्त सहारों को ना देखकर केवल कृष्ण की शरणागति में जाएंगे, अपना 100% शरणागति यदि भगवान को देंगे तो भगवान भी 100% सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसे वो पांडवों को प्रदान करते हैं। आगे भीष्म पितामह कहते हैं तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतम्। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सुत्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतम्। तथाप्येकांत भक्तेषु, वैसे तो भगवान सब पे समान रूप से कृपालु होते हैं, जैसे कि पहले बताया कि सर्वात्मनः समदृश्यो,
भगवान किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, सबके ऊपर एक समान, समोहम सर्वभूतेषु, सबके ऊपर एक ही समान की कृपा करते हैं। भगवान की कृपा में कभी ये भेद नहीं होता है कि वो महान है, वो नीच है, ये जानवर है, ये मनुष्य है, कि ऐसे नहीं देखते भगवान। भगवान सबसे सम है। परंतु तथापि एकांत भक्तेषु, परंतु जो भगवान के एकांत भक्त होते हैं, जो भगवान के एकनिष्ठ भक्त होते हैं, यहाँ पर अत्यंत सुंदर शब्द यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की कृपा का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो एकांतक भक्त होता है। एकांतक का मतलब होता है जो ओनली कृष्ण का भक्त होता है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की भक्ति नहीं करता, किसी से प्रेम नहीं करता, निरंतर केवल कृष्ण पर अपना ध्यान। भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं, भगवान कहते हैं माम एकम श्रम रजा, केवल मेरी शरण में आओ। तो जो केवल भगवान की शरण में जाता है, भगवान की एकांत की भक्ति करता है, तो पश्य भूपानुकंपिता, भूपान उनको बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, कि वो उनके ऊपर इतनी दयालु होते हैं, इतनी कृपा करते हैं। आप जरा उनकी कृपा तो देखिए कि यन्मे सुस्ते जतः, जैसे ही मैंने ये इच्छा की कि मैं अपना ये शरीर त्यागूं, जैसे ही मेरे मन में अब शरीर त्यागने की इच्छा आई, साक्षात कृष्ण, साक्षात स्वयं भगवान स्वयं आ गए। माना मैंने उनको बुलाया नहीं, मैंने किसी के साथ ये नियोक्ता नहीं भेजा कि कृष्णा अब मैं शरीर त्याग रहा हूँ, कृपया आप मेरे सामने आ जाइए, नहीं, वो साक्षात कृष्ण, वो स्वयं ही कृष्ण दर्शनम आगत, दर्शन, इतनी कृपा है उनकी, इतनी करुणा है कि अब इस अंत समय में वो स्वयं ही मुझको दर्शन देने के लिए आ गए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, क्या भीष्म पितामह ये कह रहे हैं कि मैं भगवान का इतना एकांतक भक्त हूँ कि जैसे ही मेरी इच्छा हुई तो वो आ गए हैं मेरे दर्शन, मुझे दर्शन देने के लिए? नहीं, भीष्म पितामह ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं एकांतक भक्त हूँ, बल्कि उनको तो मन ही मन में दुख है कि मैं तो बल्कि उनके एकांतक भक्तों को कितना कष्ट दिया, मैंने उनके साथ युद्ध किया, मैं सदैव उनके विपक्षी दल के साथ, क्योंकि एकांतक भक्त कौन है, वो युधिष्ठिर आदि को बता रहे हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, आप सब भगवान के इतने एकांतक भक्त हो, और वो भगवान पांडवों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके वंश में उत्पन्न होने के कारण वे स्वयं मुझे अंतिम समय में दर्शन देने के लिए आए हैं। ये कितनी बड़ी भगवान की अनुकंपा है कि भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने कृपालु होते हैं, इतनी अनुकंपा होती है भक्तों की, कि उनके खानदान में यदि उनके कुल में भी कोई मर रहा होता है तो उनके ऊपर भी भगवान, मतलब उनके पूरे कुल के ऊपर ही भगवान कृपा करते हैं। जैसे प्रहलाद जी के कुल में बाणासुर थे, तो भगवान ने उनकी भी हत्या, यानी कि प्रहलाद को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे तो तुम्हारे पिताजी को तो मैं कृपा अवश्य प्रदान करूंगा, लेकिन तुम्हारे कुल में कई करोड़ों पीढ़ियों तक मैं किसी का भी सर्वनाश नहीं करूंगा, मैं आऊंगा। तो अगर मतलब ये प्रश्न उठता है कि अगर कोई बहुत महापापी महाखल उसके कुल में पैदा होगा तो भी भगवान ने कहा मारूंगा नहीं, मतलब किसी तरह से उसे सबक सिखाऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, लेकिन अब मैं हत्या नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम्हारे कुल में आ गया है, तो मैं उसे अवश्य अपनी कृपा प्रदान करूंगा। इसीलिए बाणासुर को भगवान ने वध नहीं किया था, जो कि उनके कुल में महाराजा बलि के पुत्र थे। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, अनुवाद, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष दयालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण
उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। वास्तव में एक जीव जब तक भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा रखकर उन्हें अपना रक्षक मानकर अपना स्वामी मानकर नहीं चलता है, तब तक उसके जीवन में बहुत भय होगा, बहुत संकट होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स, वो हर प्रॉब्लम में परेशान हो जाएगा। लेकिन जब वो उसके मन में ये आ जाएगा कि कृष्ण है ना, वो मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास होगा, पूरी श्रद्धा होगी, कृष्ण के ऊपर पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट होगा ना, जब इतनी श्रद्धा होगी कि वो अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा होता है ना, भक्त के साथ देखने में लगता है कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, जैसे द्रौपदी के साथ कितना बुरा हो रहा था, भरी सभा में उसका वस्त्र हरण किया जा रहा है, कोई इमेजिन करे आज के कलयुग में भी कितना बुरा है ये, कि कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी संतान जो है वो अपने बाप दादाओं के सामने ऐसी हरकत नहीं करती। लेकिन भक्त जब भगवान के ऊपर निर्भर होता है ना, तो उसके साथ भले कितना बुरा भी होता है, भगवान दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा संसार चाहे कितना ही बुरा क्यों ना करना चाहे, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी बुरा होने नहीं दूंगा। ये भगवान के ऊपर श्रद्धा जो है ना, वो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। जीना सरल हो जाता है, कष्ट खत्म नहीं होते हैं, लेकिन कष्टों में भी कृपा दिखने लगती है जब हम भगवान के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह परम आश्रित रहता है तो परम सुखी होता है। जीव संसार में सुख ढूंढ रहा है, भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का आश्रय ढूंढ रहा है कि यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, यहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगी, यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, यहाँ से आनंद मिलेगा। लेकिन भगवान की इच्छा से जीव को इस तरह से बनाया गया है, उसको मैन्युफैक्चर ऐसे किया गया है कि उसको सुख तभी प्राप्त होगा जब वो भगवान की आश्रित हो जाएगा, जब वो भगवान की शरणागति हो जाएगा, जब भगवान को सरेंडर करेगा। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीव भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए अपने आप को गलत समझता है तो उसका पतन होने लगता है। वो समझता है शायद मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर को आनंद देने के लिए भौतिक वस्तुओं के ऊपर को प्राप्त करना है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसका पतन हो जाएगा। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकृष्ट हो। कुछ भी हो जाए, यदि हम भगवान की शरण में होंगे, भगवान की शरणागति होंगे, भगवान की लीलाओं में, भगवान के नाम में यदि रुचि अपनी बनाए रखेंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमें सुझाव देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकृष्ट रहे। भीष्म जी की मृत्यु शैया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए हैं क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से शारीरिक संबंध था क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई थे, किंतु भीष्म से उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भले ही भौतिक दृष्टि से भीष्म जो है वो अर्जुन वालों का साथ नहीं दे रहा था पांडवों का, लेकिन भगवान जानते हैं कि हृदय से भीष्म पितामह पूरी तरह से शरणागत हैं, पूरी तरह से भगवान के समर्पित हैं। अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि भगवान के खिलाफ कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था युद्ध में कि भीष्म पितामह इतने जोर के बाण चलाते थे और क्योंकि अर्जुन से पहले कृष्ण बैठे होते थे तो भगवान को घाव लगता था, भगवान के शरीर से भी खून निकलने लगता था कि भगवान भले ही उनका शरीर भौतिक नहीं होता है लेकिन भगवान ऐसी लीला करते हैं, दिखता था कि भगवान को तीर लगा, भगवान को घाव हुआ। तभी तो अर्जुन बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे क्योंकि कृष्ण के ऊपर भी इतने भार कभी कभी लगते थे भीष्म पितामह के। तो यहाँ भीष्म पितामह भले ही विरोध दल में थे, लेकिन उनका हृदय पूरा का पूरा भगवान की शरणागति था। फिर भी चूंकि शारीरिक उनका कोई संबंध नहीं था, लेकिन आज भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वास्तव में भगवान का हर एक आत्मा के साथ घनिष्ठ संबंध है। आत्मा जिस शरीर में हो चाहे, लेकिन यदि वो समर्पित है तो भगवान उसके साथ अवश्य उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। उस भगवान अवश्य उसको कृपा प्रदान करेंगे। जितना आपका सरेंडर, जितना आपका समर्पण होगा, भगवान अवश्य आपके ऊपर उतनी कृपा करेंगे। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराजा नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान जो है उनको जब उनके भक्तों के साथ नाम लेकर पुकारा जाता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए भगवान को जब महाराजा नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो भी अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक यानी दैहिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममयी सेवा के आदान प्रदान का अन्य गुण है। भीष्म इस दिव्य माधुर्य भाव से अवगत हैं, इसलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य माधुर्य संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अन्य जो मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए, यानी कि भक्तों के माध्यम से कृष्णा आप राधा रानी के प्रीतम है। इसलिए हम महामंत्र जप करते हैं और सबसे पहले राधा रानी का नाम, राधा रानी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप कृष्ण की सबसे परम प्रिया हो, आप कृष्ण तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुंचा दो, कृष्ण हमें भी कृष्ण की सेवा का अवसर प्रदान हो। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान के मान्य भक्त हैं उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित ना करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरु करने की क्या आवश्यकता है, हम डायरेक्ट से भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप इतने पवित्र नहीं हो कि डायरेक्ट से भगवान तक आपकी रसाई हो, इसलिए कोई ऐसा माध्यम ढूंढना चाहिए जो तत्वदर्शी हो, जो जिस जो भगवान तक पारदर्शी यानी कि वो ट्रांसपेरेंट मीडिया हो, जो भगवान का और आपका मिलाप करा सके। ऐसे गुरु का हमें ऐसे गुरु की हमें खोज करनी चाहिए ताकि वो हमें इस पथ पर ले जाए और सही हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें पहुंचा सके। वास्तव में भक्तों ये परम सौभाग्य है भीष्म पितामह का कि आज जब उनके जीवन का अंतिम क्षण है तब साक्षात भगवान, कितनी सुंदर बात है कि जैसे ही भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने की इच्छा की है तो साक्षात कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। वास्तव में भक्तों ही सबसे बड़ा सौभाग्य है क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यमराज जी भूल जाएं कि किसी व्यक्ति को भाई उसकी मृत्यु नहीं हो। हर एक को मरना है। कोई जगह ऐसी नहीं, कोई देश ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर छुपकर आप मृत्यु से बच सकते हो। जैसे बहुत सारे गांव होते हैं जहां पर हो सकता है हॉस्पिटल ना हो, स्कूल ना हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ना हो, परंतु कोई भी गाँव कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर शमशान भूमि ना हो। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मरण न हो। एक बार राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि हम सब गए थे एक जगह पर, एक गांव में प्रचार करने के लिए, तो वहां पर कोई भी जप नहीं करता था, कोई भी जप नहीं करता था, कोई भी भगवान की सेवा नहीं करता था। तो हमें भेजा गया, गुरु महाराज ने भेजा कि आप इस गांव में जाकर प्रचार करो। तो हम वहां पर जहाँ पर प्रचार रखा था वहां के सामने ही थोड़ा आगे शमशान था जहां पर मुर्दों को जलाया जाता था। तो हमने पूछा
कि ये जो सामने ग्राउंड बना हुआ है वो क्या है, वहां पर क्या करते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं देना, सिर्फ हाथ ऊपर करना जैसे इसको पता है। तो बोले यहाँ पर क्या, ये कोई क्लब है, कोई नाइट क्लब है यहाँ पर, या यहाँ पर कोई प्रोग्राम्स रखते हैं, कोई गार्डन है, क्या है ये जो सामने है? तो किस किस को पता है हाथ ऊपर करें? तो सबको पता था कि ये शमशान है, क्योंकि गांव में सब रहते थे, वहां पर सबको खबर थी। तो एक यंग बॉय था, उसको उठाया, बोला आप बताओ कि क्या है ये? तो उसने कहा कि ये शमशान है, शमशान। तो राधा गोविंद महाराज कहने लगे कि शमशान, शमशान में क्या करते हैं, यहाँ पर शमशान क्यों बनाया है? तो वो व्यक्ति जो लड़का था वो सोचने लगा, लेकिन मेरे महाराज ने शमशान के विषय में नहीं पता। तो भी बोला कि महाराज जिसकी मृत्यु हो जाती है हम उसको यहाँ पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर उसका अंतिम क्रियाकर्म होता है। तो महाराज ने कहा अच्छा यहाँ पर भी मृत्यु होती है, आपके गांव में भी लोग मरते हैं, महाराज यहाँ पर भी होता है मृत्यु, यहाँ पर भी आती है, आपके गांव में भी लोग मरते हैं? तो वो बोला हाँ यहाँ पर भी लोग मरते। बोला मैं तो समझा था कि यहाँ पर कोई नहीं मरता, यहाँ पर मृत्यु नहीं आती, यहाँ पर भी लोग मरते हैं, तो फिर आप भजन क्यों नहीं करते? आपको डर नहीं लगता मृत्यु से, यमराज से डर नहीं लगता, नरक में जाने से डर नहीं लगता? आप यहाँ पर कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, कोई भी भजन नहीं करता, कोई भी भगवान का नाम नहीं जप करता, आपको ये नहीं पता कि मृत्यु आएगी? कोई यहाँ पर किसी, ना किसी ने तिलक लगाया, ना किसी ने कंठी पहनी है, ना किसी ने माला उठाई है, तुम्हें पता नहीं है कि यमराज जब इन चीजों को देखते हैं तो फिर वो दिखाई नहीं देते, यमराज से भी बच जाते हैं यदि हम भक्ति करते हैं। तो जब यहाँ पर भी यमराज का डर है तो कम से कम भगवान का पवित्र नाम तो जप करो आप लोग। तो ऐसे वो बता रहे, वैसे तो ये जीवन एक सफर है, वैसे तो छोटा छोटा डिपार्चर तो यहाँ से वहां तक होता रहता है, सुबह से उठते हैं यहाँ से लेकर वहां तक, ऑफिस, घर से लेकर ऑफिस तक, या फिर स्कूल तक, स्कूल से फिर ट्यूशन तक, ये सफर चलता रहता है। कभी एक देश से हम दूसरे देश में जाते हैं, कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, कभी कहीं पर सफर करते हैं तो कहीं पर सफर करते हैं। तो ये सफर तो संसार का जीवन भर चलता रहता है, लेकिन एक सफर ऐसा होता है संसार का जिसे महाडिपार्चर कहते हैं। मतलब वो ऐसा सफर है कि उस सफर पे जाने के बाद आप इसी शरीर में वापस नहीं आ सकते, फिर आपको देह का भी त्याग करना पड़ता है। जैसे साधारण सफर पे त्याग जाने के लिए क्या होता है, हम ड्रेस को त्याग सकते हैं कि भाई ये वाला ड्रेस नहीं पहनना, जैसे स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म त्याग कर देते हैं, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। और इसी तरह से हर एक जगह पर जाने के लिए अलग अलग ड्रेस तो त्याग सकते हैं, लेकिन ये एक महाडिपार्चर ऐसा होता है जहाँ पर हम इस देह के साथ भी नहीं जा सकते, देह को भी त्याग करना होता है। और ऐसा कहता है शास्त्र कि जैसे हम किसी का फोटो लेते हैं ना, पिक्स, जब पिक्चर खींच रहे होते हैं, फोटो खींचते हैं, तब बटन दबाने से पहले जैसा आपका मुद्रा होगी, जिससे भी आपने बनाया होगा फेस, आपकी आंखें खुली हैं, बंद हैं, माउथ खुला हुआ है, बंद है, आप ऐसे देख रहे हो, वैसे देख रहे हो, हाथ ऊपर है, नीचे है, जैसा आप उस वक्त हो ना, जिस टाइम पर अंत में बटन दबाया जा रहा है, उस टाइम पर जैसा आपका फीचर है, सेम टू सेम ऐसा पिक फोटो में आएगा, है ना, सेम टू सेम ऐसा क्लिक हो जाएगा, क्योंकि बटन दबाया उसी टाइम पर उसका ही आपका फोटो निकला। उसी तरह से जब मृत्यु आती है उस समय आपके मन में जो जो विचार होते हैं वैसा ही सेम एज इट इज आपका दूसरा जन्म होता है। उस समय यदि आपने हिरण के बारे में, जैसे महाराजा भरत ने उस समय हिरण के विषय में विचार किया, तो सेम टू सेम हिरण जैसा ही उसको जन्म मिला। उस समय यदि आप किसी भौतिक वस्तु के विषय में विचार करते हो, यानी कि मृत्यु के समय अंत में भगवान कहते हैं भगवद गीता में 8.6, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वायति कौन्तेय सदा तद भाव भावितम। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मतलब जैसा आपका भाव होगा शरीर त्यागने के टाइम पर वैसा ही आपको दूसरा जन्म मिलेगा। अगर आप शरीर त्यागने के टाइम पर आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारा धन मिला है, ये यहाँ पर इतना सारा धन रह जाएगा, अब जाहिर सी बात है सब लोग मैंने मेहनत से कमाया है और सब लोग ले लेंगे, तो उस समय उस धन के ऊपर आपको नाग बनकर भेज दिया जाएगा कि ठीक है जाओ, तुम्हें धन की आवश्यकता है, जाओ रखवाली करो पूरी जिंदगी अपने धन को। उसी तरह खाने पीने के अंदर यदि हमारा मन होगा तो ऐसी कोई योनि में जिसमें बहुत खाया जाता है, कुत्ता सुअर हाथी कुछ ऐसा बना दिया जाएगा। मतलब जैसी जैसी आपकी उस समय इच्छा होगी, वासना होगी, जैसा भाव होगा वैसा आपको दूसरा शरीर मिलेगा। और ये एक बात फिर भी कुछ लोग यहाँ पर विचार करते हैं कि चलो ठीक है सारा जीवन अपराध करते रहेंगे, अंत समय में इसे ही दूसरा जन्म आएगा ना, सारा जीवन मजा करेंगे, अंत समय में भगवान को याद करेंगे, इसे भगवान श्री कृष्ण बता देंगे भाई अंत समय में जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको जन्म मिलेगा। तो शास्त्र कहता है अंतमति सागति, यानी अंत के अंदर आपकी जैसी मति होगी वैसी आपको गति मिलेगी। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है अंत का मति, यानी कि वो कौन सी स्थिति है, अंत में मति कैसी बनती है। तो शास्त्र इसका उत्तर देते हैं या सर्वदा मति, अंत में आपकी मति वैसी बनेगी जैसी पूरे जीवन आपकी मति हो। यदि आपने पूरा जीवन अपराध किए हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अंत समय में आपको भगवान याद आए। इसे भगवान हमें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 5 श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यदि अंत समय में मुझे याद करते हुए आप इस शरीर को त्यागोगे, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करेगा। तो अर्जुन कहता है ठीक है फिर तो सिर्फ अंत में मुझे याद करना है ना, तभी भगवान कहते नहीं अंत में याद वही आएगा जो पूरा जीवन जिसे याद किया है। इसलिए 8.7 में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्धच, वास्तव में ये बात यदि समझ में आ जाए ना जीव को तो फिर जीना सहज हो जाए मरना सहज हो जाए। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए पूरे जितनी भी समय है हर समय आप क्या करो माम अनुस्मरण मुझे याद करो, और यदि सारा समय मुझे याद करोगे तो क्या होगा मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, मेरे विषय में सोचो और मुझे शरणागति मेरे हो जा, मामे वैशत्य संशय, फिर ऐसा यदि करोगे तो उस समय आपको याद आऊंगा, वरना मुझे याद करना भी इतना ज्यादा सरल नहीं है। इसलिए कुलशेखर प्रभु अपनी प्रार्थना में कहते हैं, अत्यंत सुंदर प्रार्थना है, भगवान को कहते हैं प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्तये प्राणावराधन विधो स्मरणं कुतस्तः। अर्थात वे कहते हैं हे भगवान अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा मन आपके चरणों में लगा हुआ है, आज ही मेरे मन रूपी राजहंस को आपके चरण कमल रूपी पिंजरों में कैद कर दो, आपके चरण कमल में आश्रय दे दो मुझे, आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ इसलिए आपको स्मरण करना सरल है, आज मैं बहुत ठीक ठाक हूँ मेंटली फिजिकली मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ इसलिए आप पर मन बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है, बुद्धि आपके विषय में विचार कर रही है, परंतु जब प्राण निकलने का समय आएगा प्राणा प्रयाण समय जब प्राण निकल रहा होगा उस समय कफ वात पित्तये सारी जो नाड़ियां हैं वो कफ से भर जाएंगी, उस समय प्राणावराधन विधो उस समय तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं सांस भी नहीं ले सकूंगा, और उस समय वाकई में ऐसा होता है जीव तड़पाने लगता है वो सांस भी नहीं ले सकता। तो वो कहते हैं स्मरणम कुतस्थ, उस समय मेरा स्मरण कैसे, सांस लेने के लिए मैं इतना मतलब परेशान हो रहूंगा तड़पड़ा रहूंगा मैं तड़प रहूंगा, इसलिए कृष्ण इस समय आपका स्मरण कैसे होगा, स्मरण कुतस्थ, तो आज आप है ना आज ही अभी अपने मेरे मन को अपने चरण कमलों में कैद कर दो। वास्तव में अगर हम अभी भी देखें अगर प्रैक्टिकल करके देखें कि इस समय किसी व्यक्ति की नाक पकड़ लो और उससे नाक पकड़ के उसको सांस नहीं ले सकेगा ना, अब वो सांस नहीं ले सक रहा है, छटपटाने शुरू हो जाएगा, और उसको कहो कि आप भगवान का स्मरण करो, अभी भगवान को याद करो, वो तड़प रहा होगा, बोलेगा पहले छोड़ो तो सही, पहले छोड़ो तो, पहले हटो तो सही, थोड़ा नाक तो छोड़ो मेरी, सांस तो ले लो, फिर मैं ना भगवान का स्मरण करूंगा। तो इस तरह से यदि थोड़ा सा भी दुख संसार में आ जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है और भगवान को स्मरण करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि इसका अभ्यास रहेगा, सदैव हम भगवान को याद करते रहेंगे, तो इसलिए कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए आप हर वक्त भगवान को स्मरण करने की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते 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 फिर अंत समय में हम भगवान को अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब देखो इस संसार में भी ऐसा ही होता है, जो भक्त होते हैं ना उनको भगवान कष्टों में बहुत जल्दी याद आ जाते हैं। जैसे अगर एक भक्त और एक अभक्त जिसने भगवान का कभी नाम नहीं लिया है, वो और एक भक्त जब जा रहे हो रास्ते में किसी ईंट से टकरा कर वो गिर जाए, भक्त यदि पहले गिरेगा, मतलब भक्त गिरेगा तो क्या होगा, ईंट से टकराया वो गिर गया, अब उस समय उसके माउथ में फौरन से आएगा ए कृष्णा, मतलब दुखा ना उसको लगा। तो कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोग, उनको दुख होता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर सुई मारा होता है, कृष्णा 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 ऐसे मतलब चिल्ला रहे होते हैं, कृष्ण को याद कर रहे होते हैं। भक्त का ऑटोमेटिक कृष्ण के अंदर इतना अनुराग होता है कि वो हर सुख में भी भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है, हर दुख में भी भगवान का नाम निकलता है। लेकिन अगर अभक्त कोई जा रहा होगा और उस वो किसी रास्ते में ईंट पड़ी होगी और वो गिर जाएगा तो उसके माउथ से अनायास ऐसे निकला, कौन सा यहाँ पर ईंट रख कर छोड़ दिया, खामगा मुझे गिरा दिया, मतलब वो उसके माउथ से निकलेगा ही नहीं भगवान का नाम। अब छोटी छोटी कष्ट में जब हम भगवान का याद नहीं कर सकते हैं तो उस समय महाकष्ट होगा, उस समय भगवान का नाम निकलेगा नहीं वो। और ऐसे भगवान जिनका अंत समय में केवल नाम भी मुख से निकलना इतना ज्यादा कठिन है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो साक्षात कृष्ण अंत समय में भीष्म पितामह के सामने उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। ये कितना बड़ा, कितनी महान बात है, कितना सौभाग्य है भीष्म पितामह का। इसलिए वो कहते हैं कि तथा एकांत भक्तेषु, जो एकांतक भक्त होते हैं भक्त भगवान के, पश्य भूपानो कंपिन, उनके ऊपर उनकी कृपा तो देखो कि मैं जैसे ही इच्छा कर रहा हूँ कि मैं अब ये शरीर त्यागूं, साक्षात कृष्णो दर्शनम आगता, स्वयं साक्षात भगवान स्वयं ही आ गए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। और इसी बात को भीष्म पितामह आगे कहते हैं, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, आवेश यानी चिंतन करते हैं मनो मन में, यस्मिन जिसमें, वाचा यानी शब्दों के, यन नाम कीर्तन मन के अंदर जिसका भगवान का चिंतन करते हैं और शब्दों से भगवान के नाम का जप करते हैं। वास्तव में भक्तों यही कार्य करना है, मन से भगवान का चिंतन और वाचो यानी वाणी से भगवान का कीर्तन, मन से चिंतन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और वाणी से भगवान का कीर्तन करते जाएंगे। कलयुग में यही एक साधन है, क्योंकि त्यजन कलेवरम योगी, जो योगी लोग होते हैं वो इस तरह से अपने क्लेवर को त्यागते हैं और क्या होता है उनके साथ, मुच्यते काम कर्म भी, तो फिर इस तरह से जितने भी काम सकाम कर्म उन्होंने किए हैं उनके फलों से वो मुक्त हो जाते हैं। अनुवाद, जो भगवान भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन्हें उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है या भगवान की सेवा में शत प्रतिशत अनुरक्त। यहाँ पर जो योग लिखा हुआ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो स्थिति है जिसमें सारे विषयों से हटाकर भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो समस्त सहारों को छोड़कर भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ता है, मन में केवल भगवान का स्मरण करता है और वाणी से भगवान का कीर्तन करता है, वो 100% भगवान में अनुरक्त होता है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 2400 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त दूसरे कार्य नहीं करता, लेकिन उसका मन जो है वो सदैव भगवान में लगा रहता है, और नवधा भक्ति में किसी न किसी में लगा रहता है। या तो भगवान के विषय में श्रवण कर रहा होता है, या भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा होता है, या भगवान को स्मरण कर रहा होता है, भगवान की पूजा कर रहा होता है, किसी न किसी तरह से वो भगवान के साथ अपना योग लगाए रहता है और भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पूजनम स्तुति दास्य भाव आज्ञा पालन सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। ईश्वर प्रभुपाद जी नवधा भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि योग के ऐसे अभ्यास से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बताते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान के अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ही ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबंध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर केवल आध्यात्मिकता होती है, भगवान की अंतरंग शक्ति, जहाँ पर केवल कृष्ण का प्रेम होता है, भौतिक संसार की कोई गंध तक वहाँ पर नहीं होती। इस संसार में जीव को अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। ऐसा भौतिक जीव जो स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है भगवत भक्ति से, यानी कि ये जो भी कष्ट हो रहे होते हैं वो क्यों होते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक, अपनी इच्छाओं के कारण ही उसको बारंबार कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि इच्छाओं को समाप्त करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करता है, तो फिर इन समस्त कष्टों से वो मुक्त हो जाता है। भगवत भक्ति से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता, अपितु वे भक्ति के सत कार्य में लग जाते हैं। इच्छाएं खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं भक्ति करने से जीव के अंदर भाव खत्म हो जाता है, वो पत्थर का बन जाता है, नहीं, वो सारी इच्छाएं होती हैं उसके हृदय में, लेकिन वो परिवर्तित हो जाती हैं। सारी इच्छाएं जो कि पहले खुद को संतुष्ट करने के लिए जीव करता था, अब वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। इससे इच्छाएं वैकुंठ चली जाती हैं। सेनापति भीष्म देव यहाँ पर विशेष प्रकार के त्याग का उल्लेख करते हैं। ये वो योग है जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, चैप्टर 6 वर्स नंबर 47 भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मत्कतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजति यो माम् समेयुक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां, मतलब जितने भी योगी हैं सब योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, मत गतेनांतरात्मना, जो कि श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है।
श्रद्धा के साथ मेरा भजन, श्रद्धावान भजते यो मन, श्रद्धा के साथ मेरे नाम का भजन करता है समय युक्त तमोमत, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। योग में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ वही व्यक्ति है। तो इसी बात को यहाँ श्री भीष्म देव समझा रहे हैं कि त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते सर्व किलबिषय, वही योगी जो है वो जो सदैव भगवान के अंदर अपने मन को लगाए हुआ होता है, जब वो अपने शरीर को त्यागता है तो उसके सारे कर्म जो है वो कर्मों का फल समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भीष्म देव यहाँ पर विशेष योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को देख रहे थे। अतएव उन्होंने अगले श्लोकों में इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे। आगे भीष्म पितामह उन्हें भगवान को बोलेंगे कि कृष्ण देखो आप तब तक यहाँ से हटना नहीं जब तक कि मेरे प्राण न चले जाएं। मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कृपया जब तक आप यहीं रहो जब तक कि मेरा अंतिम श्वास न समाप्त हो जाए। वास्तव में भक्तों ये कितना बड़ा भाग्य है कि वो भगवान जिनके स्मरण की केवल नाम उच्चारण की इतनी महिमा है कि उस समय मृत्यु के समय खाली स्मरण भी आ जाए भगवान का तो जीव समस्त भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर रहा है। वो भगवान साक्षात शरीर त्यागते समय जिसके पास आए उसके भाग्य का क्या कहना। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भीष्म पितामह को ऐसा सौभाग्य प्राप्त, और ऐसा सौभाग्य बहुत ही विरले भाग्यवान व्यक्तियों को मिलता है। मानसिक स्थिति का बहुत प्रभाव होता है क्योंकि मरते समय बहुत बहुत कष्ट होता है, उसी समय हमें भगवान की स्मरण आता बहुत मुश्किल से है, लेकिन क्योंकि अब भगवान साक्षात सामने खड़े हैं तो स्मरण क्या, भगवान ही दिख रहे हैं, भगवान को खाली देख रहे हैं, भगवान को खाली भगवान सामने खड़े हैं, वो बात कर रहे हैं भगवान से। कितना सुंदर ये दृश्य होगा कि भले कितना उन्होंने, सब लोग बोलते हैं भीष्म पितामह ने कितने कष्ट सहे कितने कष्ट सहे, लेकिन उनसे ज्यादा भाग्यवान शायद ही कोई हो जो साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं इस घड़ी को देखने के लिए। तो करोड़ जन्मों तक यो शेर सैया पर सोना स्वीकार कर सकता है एक जीव, एक भक्त जो है उसको अगर ये निश्चय दिया जाए कि साक्षात भगवान आपको अंत समय में दर्शन देंगे तो बहुत बहुत कष्टों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो सकता है। और ये कष्ट कुछ नहीं है उस सुख के सामने जो अंतिम समय में भगवान के दर्शन से सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भीष्म पितामह बता रहे हैं भक्त्यावेश मनो यस्मिन वाचा यन्नाम कीर्तयन, कि अब क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है तो यदि भगवान का नाम अंत समय में हमारी जिह्वा पर आ जाता है तो समझो साक्षात भगवान ही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कभी भी कि भगवान में और भगवान के नाम में अंतर है। अगर आज भी यदि कोई भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है तो इसका मतलब है साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है। इसलिए यहाँ भीष्म पितामह हमें सुझाव दे रहे हैं वास्तव में हमें यही करना है जीवन भर, क्योंकि हर एक युग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीका बताया गया। कृते या ध्यायते विष्णु, सत्युग में ध्यान किया जाता था, आज के कलयुग में बताओ कौन ध्यान कर सकता है। एक घंटे तक हमें माला करते हैं, हमें एक माला में 10 दफा तो हमारा ध्यान टूटता है, तो ध्यान इस युग के लिए नहीं है। और त्रेतायाम यज्ञ तो मगे, आज यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि यज्ञ के लिए जो पवित्र ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण है हमारे पास नहीं है, शुद्ध ब्राह्मण जो मंत्र उच्चारण कर सकते वो नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण को तो छोड़ो, शुद्ध घी नहीं मिलता, हर चीज में मिलावट है, शुद्ध देसी घी नहीं मिलेगा, शुद्ध वस्तु नहीं मिलेगी तो फिर यज्ञ कैसे होगा। और अर्चा विग्रह पूजा भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर सकते हैं और मन से भगवान को स्मरण कर सकते हैं भगवान की कथाओं का श्रवण करने के द्वारा। तो ये कलयुग में हमें यही करना है, मन से भगवान को स्मरण करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करके उनको स्मरण करना है और वाणी से भगवान की पवित्र नाम का कीर्तन करना है। ऐसे करते 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 ये जिंदगी सरल हो जाएगी और मृत्यु के समय भी, क्योंकि अभ्यास होगा तो क्या होगा, त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म।
आत्मा भी इस तरह से जब हम अपने शरीर को त्यागेंगे तो अंत समय में भी भगवान की लीलाओं का स्मरण हो रहा होगा और मुख से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हो रहा होगा, तो डेफिनेटली भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।